ओम शांति। तो गीत में ही सारी मुरली समाई है आज की, है ना? कितना अच्छा गीत था, कितना प्यारा है हमारे बाबा का प्यार, और ऐसा है जो जन्नत की बाहर लाता है। और उसमें और भी कुछ था कि मधुबन का प्यार, देवी परिवार का प्यार। तो आज की मुरली जो है संडे की, उसको रिवाइज करेंगे तो प्रभु परिवार श्रेष्ठ परिवार। तो बाबा ने आज परिवार की बात की हमारे साथ। तो शुरुआत एक कहानी से करेंगे। एक बच्चा होता है, वो खेत में जाता है अपने पिता के साथ और देखता है कि आकाश में इतनी सारी रंग बिरंगी पतंगे होती है, और वो बहुत खुश होता है पतंगे देखकर, और अपने पिता से कहता है कि मुझे भी पतंग उड़ानी है। तो पिता फिर वो रोलर लेके आता है और पतंग लेके आता है। फिर ये बच्चा पतंग उड़ाना चालू करता है तो आहिस्ते आहिस्ते इसकी भी पतंग बहुत ऊपर जाती है, बहुत ऊंची चली जाती है। तो उसको लगता है कि देखो, ये जो धागा है ना, ये बांध के रख रहा है पतंग को, अगर इस धागे को काट देंगे ना तो पतंग और ऊपर उड़ जाएगी। बच्चे को ऐसा लगता है कि ये धागे ने इसको नीचे बांध के रखा है, अगर मैं धागे को काट दूं तो पतंग ऊपर चली जाएगी। तो वो अपने पिता से कहता है कि धागे को काट दो ताकि मेरी पतंग बहुत ऊपर जाए। तो पिता धागा काट देता है। तो फिर क्या होता है, पतंग पहले तो थोड़ी ऊपर जाती है, फिर उसके सामने आके नीचे गिरती है। तो वो अपने पिता को पूछता है, ऐसे क्यों? तो पिता कहता है, जब धागा तुम्हारे हाथ में था तो हवा के रोक से ऊपर उड़ती थी, नीचे आती थी, फिर जम के ऊपर जाती थी। तो धागे ने उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो उसकी है, उड़ान जो है, वो धागे की वजह से है। तुमने धागा ही काट दिया तो नीचे आ गई। तो कहने का भाव ये था पिता का कि जो परिवार है, हमको लगता है जब हम संगठन के बाहर जाएंगे तो बहुत ऊंचा उड़ सकेंगे, बहुत ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, लेकिन पिता उसको समझाता है कि ये जो धागा है ना, ये संगठन है और ये परिवार है। जब हम संगठन में हैं, जब हम परिवार में हैं, तो हम बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं। तो संगठन का महत्व कितना है। तो आज की मुरली में भी बाबा ने परिवार के बारे में कहा। परिवार में बॉन्डिंग होती है ना, संबंधों में हमारे। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है ना जब, तो उसको माँ की छाती पर रखा जाता है। पता है क्यों? इसको कहते हैं कंगेरू, कंगेरू ट्रीटमेंट। कंगेरू को देखा है ना, कैसे अपने बच्चे को लेके घूमता है छाती पर। तो ऐसे ही वो बॉन्डिंग डेवलप होती है। तो लौकिक में भी लोग फैमिली बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम एक दूसरे से जुड़कर रहे। तो परिवार में बॉन्डिंग बनने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? एक दूसरे से प्यार होना और एक दूसरे को समय देना। सबसे पहले आज लोगों के पास समय ही नहीं है। तो लौकिक में लोग बात करते कि एटलीस्ट हम डिनर साथ में खाएंगे, एटलीस्ट हम लंच साथ में खाएंगे, तो वो एक दूसरे को समय देते हैं। तो यहाँ पर भी हम सब भले बाबा से जुड़े हुए, लेकिन हम सब साथ में हैं, तो हम भी समय साथ में बिताते। कैसे? हमारी दिनचर्या सुबह से चालू होती है ना? हम अमृत वेला भी संगठित योग में करते हैं। जब हम मुरली सुनते हैं तो क्लास में सब साथ में बैठ के मुरली सुनते हैं, नमाज शाम का योग करते हैं। जब हम सेवा भी करते हैं तो सब मिलकर करते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं मैं अलग करूं, तो इतनी शक्ति नहीं आती। कहीं ऐसे होते हैं ना, उनको लगता है कि अकेले बैठ के योग करें, परिवार से दूर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम हमारे बड़ों को देखें, बाबा को, मम्मा को, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो तो परिवार में रहते हुए आगे गए, है ना, सबको मिलते जुलते आगे गए। देखो मम्मा कितनी तपस्वी थी, लेकिन फिर भी मम्मा हर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करती थी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं जाना है। एक बार ऐसे हुआ था कि हम एक एनुअल पिकनिक में नहीं गए, तो किसी भाई ने हमको रात में पूछा कि क्या वो आप पिकनिक पे नहीं आए? तो हमने कहा हमको कुछ काम है। तो भाई कहता है कि क्या काम है, हा? क्या सतयुग में अकेले आना है तुमको? मतलब उनको लगा कि हम कुछ अलग पुरुषार्थ कर रहे हैं इसलिए नहीं पहुंचे। तो वो हमसे कहते हैं कि तुमको सतयुग में अकेले आना है कि परिवार के साथ आना है? है ना। कई भाई बहने हम में ऐसे होते हैं जो अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं, तो एक दूसरे को समय, हम इन समय, ये जो छोटे छोटे संगठित हमारे योग है, हमारी क्लासेस है, उसमें हम एक दूसरे को समय देते हैं। तो एक दूसरे को समय देना बहुत इम्पोर्टेंट है बॉन्डिंग के लिए। दूसरी चीज कम्युनिकेशन, बात करना, है ना। एक दूसरे से बात करते हैं हम तो हल्के हो जाते हैं। अगर हम एक दूसरे से बात ही ना करें तो एक दूसरे को जान पाएंगे नहीं। कई भाई बहने बहुत लंबा मौन रखते हैं। मौन रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा ने क्या सिखाया है, मौन किस चीज का रखो, मन का मौन रखना है। कई लोगों को हम देखते हैं एकदम अकेले जाके बैठते और खाते हैं, साथ में बैठ के सीखना है मौन में खाना, है ना। अगर बार बार इस परिवार से दूर जाएंगे और पुरुषार्थ करने की कोशिश करेंगे तो अकेले हो जाएंगे। तो कम्युनिकेशन, अब हम सब साथ में रहते हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं, तो कुछ तो अनबन होती है हमारे बीच में। लेकिन जब हम अनबन हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो भी जल्दी से रिकवर होना है। नहीं तो क्या होता है, लौकिक में देखा है ना, लोगों को बातें नहीं करते, घंटों बातें नहीं करते, दिन दिन हफ्ते बीत जाते बातें नहीं करते, और फिर साल भर भी नहीं बात करते। तो घुट घुटते अंदर अंदर घुटते हैं। तो फैमिली बॉन्डिंग के लिए कम्युनिकेशन, अगर किसी से गलती हो गई या हमसे कोई गलती हो गई तो हम आगे बढ़कर जाके बात करें उनसे, तो लोगों से बात करना, तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज और क्या आएगी फैमिली बॉन्डिंग में, एक दूसरे को सम्मान, एक दूसरे को सहयोग, हेल्पिंग, है ना। जब हम किसी को हेल्प करते परिवार में तो वो बॉन्ड बढ़ जाता है। लौकिक में भी हेल्प करते हैं ना अपने भाई बहनों को, तो यहाँ पर भी वही है। जैसे अगर हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो जाता है तो हम देखते सारे लोग उसको मिलने के लिए आते हैं, कोई सुबह आता है, कोई शाम को आता है, सब अपने ड्यूटी के अनुसार मिलने आते हैं। अभी एक भाई जी हमारे पास एडमिट है जिनको कैंसर है, हम देखते हैं जब हम राउंड पे जाते तो कई भाई बहने उनको इनकरेज करते हैं, उनको एक साइड पे पैरालिसिस हो गया है, तो कई भाई बहने इनकरेज करते हैं, हाँ करो करो करो, उठो चलो। तो ये इनकरेजमेंट कैसे मिलेगी फैमिली से, अगर वो व्यक्ति अकेले रहता जिंदगी भर तो कोई नहीं आता उसको देखने के लिए। तो जैसे कि कहा सहयोग, सहयोग से ये बॉन्ड बहुत शक्तिशाली बनता है। तो इसीलिए सहयोग, छोटा छोटा सहयोग हो सकता है। एक यूएस की माता आई थी लास्ट ईयर, वो कहती है हमारी सेवा सिर्फ ये है, यूएस में कोई एडमिट होता है ना हॉस्पिटल में तो हमको भोजन पहुंचाना होता है। ये सहयोग से वो बॉन्ड बढ़ता है। वो माता को यही काम करना है, भोजन बनाना है और पहुंचाना है, तो वो भोजन बना के पहुंचाती है। तो इस तरह से वो बॉन्ड बढ़ता है। और जैसे कहा रिस्पेक्ट, हर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर सामने वाले को हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो भी हमको रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो माँ बाप का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, या युगल का संबंध हो, रिस्पेक्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाबा भी तो हमको रिस्पेक्ट ही देता है ना, हम कितनी गलतियाँ करते हैं फिर भी क्या, मुरली की शुरुआत ही कैसे होती है, मीठे बच्चे, इतने हम पतित बन गए, लेकिन ऐसे नहीं करता पतित बच्चे, ऐसे कभी शुरू हुई मुरली, कभी नहीं शुरू हुई मुरली, हमेशा शुरू होती है मीठे बच्चे से, है ना। और वो कितना सम्मान दे रहा है, जो अव्यक्त मुरलियाँ चलती है उसकी पहली पेज में स्वमान है, स्वमान से हमको भरता है, उठाता है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा बताता है हमारी गलती, फिर छोटा सा होमवर्क देता है। तो बाबा कैसे रिस्पेक्ट देता है, तो हमारा उसके साथ बॉन्ड बढ़ता है। जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि बाप और बच्चे का संबंध है ना। बाबा जब आया तो हमसे क्या कहा कि तुम मेरे बच्चे हो, सबसे पहला ये संबंध है। और ये संबंध हम सबको बहुत फ्लेक्सिबल लगता है और सब उसी संबंध से बहुत अच्छे से याद करते बाबा को। तो ये एक परिवार है। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट बात है परिवार की, कि परिवार में अगर किसी से गलती हो जाती है तो क्या करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। अगर लौकिक में अगर मेरी बहन से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई तो क्या मैं उसको बाहर जाके फैलाती हूँ, नहीं। हम उसको छुपाते हैं, हम उसको दबाते हैं, हम लोगों को जाके बताते नहीं है कि मेरी बहन ने ये गलती कर दी। नहीं बताते कभी भी, है ना। तो ब्लड रिलेशन में वो कैसा बॉन्ड है कि हम जाके बाहर बताते नहीं। तो यहाँ पर भी अगर किसी से गलती हो गई या किसी के अवगुण हमको दिख रहे हैं तो हमको जाके बाहर फैलाना नहीं है, है ना। लास्ट क्लास में हमने मम्मा के बारे में डिस्कस किया था। मम्मा की एक विशेष धारणा थी जिसमें मम्मा ने कहा था कि कोई भी बात का वातावरण नहीं बनाना है, हम यहाँ वहाँ बैठ के किसी की भी बात को फैलाएं नहीं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैमिलीज में तो झगड़े होते हैं, कभी खुशी होती है, लेकिन साथ में रहते हैं ना। तो हमारा भी ऐसा ही परिवार है, और हमारा तो ब्राह्मण परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। तो आज बाबा ने इस परिवार की बहुत महिमा की। तो बाबा ने कहा सबसे ऊंचे से ऊंचा परिवार है। तो बाबा ने आके बाप और बच्चे का संबंध बनाया और हमारे बीच में भाई बहन का पवित्र संबंध बनाया। बाबा ने कहा कि ये तुम्हारी पवित्र पालना हो रही है, और डायरेक्ट साकार में स्वयं बाबा आके हमारी पालना कर रहा है, जो कि ऐसा भाग्य हमको कभी नहीं मिलेगा, है ना। जैसे वो गीत है ना, कहाँ मिलेगा बाबा तेरा प्यार, सत्युग में तो बाबा होगा ही नहीं, और यही ये प्यार मिल रहा है हमको। तो इस परिवार की, इस जन्म की उतनी वैल्यू होनी चाहिए हमारी। तो अब प्रश्न है आप सबसे कि ईश्वरीय परिवार और लौकिक परिवार में क्या डिफरेंस है, क्या यहाँ पर है और क्या वहां पर है। जैसे हम बताएंगे पहला पॉइंट, यहाँ पे भगवान है वो बाप है, वहां पे लौकिक है, है ना। लौकिक माँ बाप होते हैं, यहाँ एक बाप है और हम इतने सारे बच्चे, और वहां एक बाप होता है, चार पांच बच्चे होते हैं, यहाँ एक बाप है और लाखों बच्चे हैं उसके, और यहाँ बाप टीचर सदगुरु एक है, वहां बाप टीचर सदगुरु अलग है, और यहाँ दिव्य अलौकिक जन्म है, यहाँ मुख वंशावली है, वहां कुख वंशावली है, और यहाँ शांति से रहते हैं वहां झगड़ा करते, और वहां यहाँ मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, वहां नहीं मिलता है। यहाँ आत्मिक प्यार है, यहाँ रूहानी प्यार है, है ना। यहाँ कहा बाबा ने भाई बहन का पवित्र संबंध है, वहां जिस्मानी प्यार है, वहां विकार है, वहां गंदगी है, और ये अविनाशी संबंध है, वो विनाशी। यहाँ तो सिर्फ बाप और बच्चे, और वहां चाचा मामा काका कितने सारे संबंध है, है ना। यहाँ सिर्फ सिंपल है, वहां बहुत सारे, वहां स्वार्थ। हाँ, यहाँ निस्वार्थ प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है भगवान का हमारे लिए, बाबा का, और वहां पे स्वार्थ वाला प्यार है, कुछ ना कुछ उनको लेना देना है। लौकिक में बच्ची को वर्षा नहीं मिलता, यहाँ सबको वर्षा मिलता है। बहुत अच्छी पॉइंट। हाँ, वहां बहुत चिंताएं है, वहां बहुत परेशानी है, और यहाँ हम बेफिक्र बादशाह है, और वो परिवार में माताओं का इतना महत्व नहीं है, लेकिन इस परिवार में माताओं का बहुत महत्व है, और इस परिवार में देने की भावना है, ये दानी परिवार है, महादानी परिवार है, वहां सब लेने की भावना है, और लौकिक में सब हदों में है और यहाँ बेहद में है, है ना। पापा ने आज कहा ना, बेहद को याद प्यार, बेहद में याद प्यार थी आज की, और लौकिक में टिट फॉर टैट, और यहाँ पे सिंपल, यहाँ बाप कहता है सहन करना है, और वहां पे तो शहंशाह बनेंगे, ऐसा थोड़ा कंप्लीट बोल दो, सहन करेंगे तो शहंशाह बनेंगे, वहां पे कोई उसका कोई बोनस नहीं है। हाँ, वहां सहन करते तो समझते कमजोर है, यहाँ सहन करते तो समझते शहंशाह बनेंगे। हम संगम युग पर है, वो कलयुग में है, और लौकिक में दो नेत्र है, यहाँ हमारे तीन नेत्र है, और यहाँ बहुत बड़ी फैमिली है और वहाँ बहुत छोटी सी फैमिली है। देह को देखते हैं, यहाँ पे आत्मा को देखते हैं। यहाँ रूहानी यात्रा है, वहाँ जिस्मानी यात्रा है। माता जी की पॉइंट एकदम परफेक्ट है। यहाँ तीन बाप है, वहाँ दो बाप है। हाँ, यहाँ यात्रा में कमाई करते, वहाँ यात्रा में खर्चा करते। और एक एक बोलो, 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती, वहां पे कोई राजाई नहीं। यहाँ सेवा में सुख मिलता है, वहां सेवा में सुख नहीं मिलता। आज बाबा ने सेवा के लिए क्या कहा? सेवा में डांस, शंकर डांस मशहूर है। बाबा ने कहा सेवा में नाचते हैं, है ना, नाचना है सेवा में तो। और अरे वाह, बाप को कुमारिया बाप को कुमारिया बहुत अच्छी लगती है, दुनिया में कुमारिया अच्छी नहीं लगती। लौकिक में कुमारियों को बंधन, बट यहाँ पर भी है ना, ईश्वरीय मर्यादा है। और यहाँ चरित्रवान बनते हैं। और आज की मुरली में क्या क्या पॉइंट्स थे? बाबा ने कहा ये ईश्वरीय परिवार आपको वार होने से बचा देता है, ये ईश्वरीय परिवार आपको स्वराज्य अधिकारी बना देता है, है ना, श्रेष्ठ बना देता है आपको। और बाबा ने कहा ऐसा भाग्य कि श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींचते हो आप। हम भगवान के बच्चे हैं यहाँ पे, वहां तो हमारे बायोलॉजिकल मदर फादर है। और हाँ, तीन तिलक दिए हमको, स्वराज अधिकारी, सर्विसेबल और सर्व परिवार और बाप दादा के स्नेही और सहयोगी। ये तीन तिलक बाबा हमको संगम पर देता है इस परिवार में। और बाबा आके हम सबको पवित्र बनाता है और वहां पे लोग अपवित्र बनाते हैं। और यहाँ पे हमारा धर्म कर्म बदल गया। हाँ, यहाँ आने के बाद वहां की पढ़ाई एक जन्म की, यहाँ की पढ़ाई की प्रारब्ध 21 जन्म मिलती है हमको। हाँ, यहाँ अलौकिक पालना मिलती है और वहां पर लौकिक, है ना, आज भी बोला ना, अलौकिक पालना मिलती है। और कितना बाबा ने कहा कि कितने प्राप्तियों के अधिकारी बनते हो आप। और बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार में सर्व प्राप्तियां है और सत्युग में भी प्राप्तियां होगी, लेकिन एक अप्राप्ति होगी, क्या? बाबा नहीं होगा। तो बाबा को तो हम बुलाते हैं, फिर भी नहीं आता सत्युग में। एक बार बाबा को स्टेज पर पूछा गया कि बाबा आप आना ना सत्युग में, तो बाबा ने क्या उत्तर दिया? बाबा ने कहा, चतुर है ना बहुत, बाबा ने कहा वहां जाके बुलाना, फिर आऊंगा। हाँ, वहां तो हम उसको भूल जाएंगे। तो बाबा के उत्तर भी ऐसे होते। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स निकाले थे कि ये विशेष प्रभु परिवार है, कुछ पढ़ेंगे इसमें से आप लोगों ने बहुत बोले। तो ये सर्वश्रेष्ठ परिवार है, सबसे बड़ा परिवार है, एकमत परिवार है। यहाँ पे हमारी सबकी एक ही मत है, विधि विधान वाला परिवार है ना, जो हम कर रहे हैं वही दुनिया में विधि विधान बनेंगे। योग युक्त परिवार है, शुद्ध शाकाहारी परिवार है, सब हम वेजिटेरियन हैं। प्यारा परिवार है ये, पवित्र परिवार है, भाई बहनों का परिवार है, कम संबंध वाला परिवार है, जैसे कहा ना, प्रभु पालना वाला परिवार है, रॉयल परिवार है, हम सब बहुत रॉयल है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न परिवार है, फिर महादानी दानी वरदानी परिवार है, विश्व कल्याणकारी परिवार है। देखो वहां वो लोग हद में सोचते हैं हर चीज, और हम जो यहाँ पे बैठ के करते तपस्या वो सारे विश्व के कल्याण के लिए करते, तो विश्व कल्याणकारी परिवार है, खुशहाल परिवार है, सब खुश है ना, खुशहाल परिवार है, पुरुषोत्तम परिवार है। आज भी कहा ना, ये परिवार आपको पुरुषोत्तम बनाता है, राजा ही प्राप्त करने वाला परिवार है, मायाजीत बनने वाला परिवार है, चरित्रवान परिवार है, वैराग्यवान परिवार है, सब वैरागी है यहाँ पर, टैलेंटेड परिवार है बहुत, सबकी एक एक विशेषताएं हैं। मधुबन निवासियों से मुलाकात में बाबा ने कहा ना कि चैतन्य दिलवाड़ा और इसमें एक मूर्ति विराजमान, तो हम में से सब में एक एक ऐसी विशेषताएं दिखाए। सिंपल परिवार है, स्वीटेस्ट परिवार है, स्मार्ट परिवार है, बहुत स्मार्ट परिवार है हमारा, निर्मोही परिवार है, निर्लोभी परिवार है, बहुत वैल्यूएबल परिवार है, हम सबको एक दूसरे की वैल्यू है, और समृद्ध परिवार है, महान परिवार है। तो ऐसी बहुत सारी बातें इसमें निकल सकती, इस पर और चिंतन करना कि ये प्रभु परिवार कैसा परिवार है। तो जैसे कि हम सोच रहे थे कि परिवार में जब हम रहते हैं तो हम एक दूसरे को जानना चाहिए ना। पता है दादी जानकी जब भी हॉस्पिटल में आती थी तो पहले कहती थी कि वह आदि रतन का चित्र कहाँ है, दादी ढूंढती थी, फिर दादी के बोलने पर लगाया हम लोगों ने। तो वो चित्र देखना, उस चित्र में जितने जितने है ना फोटोग्राफ्स, क्या हम उनको पहचानते, क्या हम एक एक को देख के पहचानते ये दादी है, ये भाई है? नहीं, तो हम अपने परिवार को ही नहीं जानते। उन सब के पीछे एक एक कहानी है कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, उनके अनुभव क्या है ना। तो हमको अपने परिवार को भी जानना पड़ेगा, हमने कहा ना कम्युनिकेशन टाइम बॉन्डिंग के लिए, तो हम अपने आप को जानते ही नहीं, हम अपने लोगों को ही नहीं जानते अभी तक। तो आदि रतन की बुक है, उस बुक में ये सारे पूर्वजों के बारे में दिया है, उसमें से पढ़ना, एक एक की कहानी इतनी अच्छी है और इतनी प्रेरणा मिलती है। जैसे कि ये हिस्ट्री हॉल में भी हम बैठे हैं ना अभी, तो ये सब चित्र है ना, इस चित्र को भी समझाने आना चाहिए, हर एक चित्र के पीछे कहानी है, एक एक चित्र कहाँ लिया गया, क्यों लिया गया, ये कौन है, पता है आप लोगों को ये कौन है, ये कौन है, ये बैडमिंटन हाथ में, अच्छा ये ट्रेन है, अच्छा वो बड़ी सी बोट है, ये कब के चित्र है, हमारी फैमिली की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए ना हमको। तो वैसे अभी पढ़ाई करनी है, हाँ, तो हमारे परिवार की हिस्ट्री हमको पता होनी चाहिए, हमारे परिवार में कौन से लोग थे, क्या तपस्या की, क्या स्ट्रगल किया उन्होंने कि उनके चित्र लग गए इधर, है ना, और जिनको पूरी दुनिया देखती है आके, तो सबके बारे में पता होना चाहिए। विश्व किशोर भाव बाबा के राइट हैंड थे, पता है इनको क्या टाइटल दिया गया, एक बार बोला गया कि ये नारायण का किशोर बनेगा, ये नारायण का किशोर बनेगा। ये इतनी सेवा करते थे बाबा की कि जब बाबा यहाँ से ट्रेवल करते थे ट्रेन में, तो ये देखते थे कि जिस डब्बे में बाबा की सीट है, जो बेड, जो कोच होगा, उसके नीचे पटरी का पहिया नहीं आना चाहिए, इतना ध्यान रखते थे, और रेलवे से बात करते थे और देखते थे कि वो पहिया नहीं आना चाहिए, क्योंकि आएगा तो खड़खड़ करेगा तो बाबा को रात में नींद नहीं आएगी। इतना प्यार, एक बच्चा और बाप के बीच में इतना प्यार था इनका, इसलिए कहा गया ये नारायण का किशोर बनेगा, है ना। और परिवार की जब हम बात करते हैं तो जगदीश भाई जी की एक याद आती है कहानी, जब ये दिल्ली में रहते थे तो बहनों के साथ रहते थे, वहां पर बहनों से इतना प्यार था, बहुत गर्मी का मौसम था उधर, तो 3 किलोमीटर की दूरी पर बर्फ की फैक्ट्री होती थी। अभी अगर स्कूटर पे जाएंगे तो पेट्रोल वेस्ट होगा, तो परिवार का पैसा भी बचाना है, तो ये चल के जाते थे 3 किलोमीटर और बर्फ की लादी अपने कंधे पर रखकर लेके आते थे 3 किलोमीटर चलकर। सोचो 3 किलोमीटर चलकर आते थे, बर्फ तोड़ते थे, बहनों को शरबत बना के पिलाते थे, ये है परिवार का प्यार, है ना। तो जब हम पढ़ेंगे तभी हमको पता चलेगा इन्होंने क्या किया। तो ये प्रभु परिवार है, और इस परिवार की बहुत अच्छी विशेषता है, हमको याद है 7 साल पहले जब हमारे मामा यहाँ आए थे, आंगन में आप गोविंद भाई जी को जानते होंगे, ये बैठे थे, इनके पास लेके गए हम, तो पता है इन्होंने इतनी अच्छी बात कही, वो कहते पता है आपको हम सब यहाँ पे रहते लेकिन हम एक दूसरे का सरनेम ही नहीं जानते। देखो कितनी बड़ी बात है ये, हम एक दूसरे के सरनेम्स भी नहीं जानते। उन्होंने कहा हम इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन हम लोगों को एक दूसरे के सरनेम्स भी नहीं पता, और जब कोई घर जाता है तब पता चलता है कि कौन से स्टेट का है। तो बात ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, तो ये परिवार ऐसा परिवार है ना। फिर आगे बाबा ने ज्ञाना के आंटी अंकल से मिले बाबा, और उनको क्या कहा बाबा ने, सर्विसेबल बच्चे हैं, पलकों पर नैनों में समाए हुए बच्चे हैं, ऐसे बाप दादा इनका स्वागत कर रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा शंकर डांस, और अगर कोई डांस चल रहा होता है तो नहीं भी नाचना होता है तो नाचने लगते हैं। तो बाबा ने यहाँ महत्व बताया सेवा का, कि सेवा में नाचना है, सेवा में नाचना है। सेवा करने से क्या होता है, यज्ञ सेवा करने से क्या होता है, खुशी, सबसे पहले तो खुशी, और भाग्य बनता है, बहुत सारा भाग्य बनता है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, हमारा पुरुषार्थ बढ़ जाता है, हमारी स्थिति बढ़ जाती है। कहीं तो कहते हैं ना कि यज्ञ सेवा करो तो आपकी बीमारियां दूर हो जाएगी, जीवन निर्विघ्न बन जाएगा, लिफ्ट मिलती है, भगवान का प्यार मिलता है। उसके यज्ञ की सेवा करोगे तो भगवान का प्यार, परिवार का प्यार, कर्म भोग से कर्म योग करते, कर्म योग से कर्म भोग करते, एक दो की विशेषता देखने मिलती, संगठन है ना, सेवा में जैसे ही आए तो संगठन में आए। जब हम ये लाइन पढ़ रहे थे तो हमको सिर्फ माताएं याद आ रही थी, हम क्योंकि आज सेवाधारियों की क्लास है ना, तो हम सोच रहे थे माताओं को देखो, अभी कितना अच्छा ठंडा मौसम है, सुबह सुबह बारिश गिरती है, ऐसा लगता है अमृत वेला के बाद जाके सो जाओ, लेकिन माताओं को हम देखते हैं जैसे ही अमृत वेला होता है 4:45 की क्लास अटेंड करते ये लोग, और फिर सीधे प्रस्थान रोटी बनाने के लिए, है ना, रोटी बनाते हैं और सब्जी काटते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं ये लोग, और फिर उसके बाद मुरली क्लास, और पूरा दिन भर इनका कैसा होता है। तो ये यज्ञ सेवा है ना, तो नाचना, कितनी खुशी होती है ना, शाम को जब हम यहाँ पे आते हैं 5 बजे के बाद, तो जो माता चाय और टोली देने के लिए बैठती है ना, वो इतनी बड़ी स्माइल करती है, तो सारी थकान जैसे दूर होती है, वैसे इशारों से बताती कि आज मुरमुरा है, आज ये है, तो ये इनकी खुशी देखो कितनी है। इतना घर छोड़कर 3-3, 6-6 महीना यहाँ पे आना और सेवा करना और अपना भाग्य बनाना, उनको भी तो याद आती होंगी ना, लेकिन कैसे वो अपना भाग्य बना रहे। इसलिए बाबा ने कहा सेवा में नाचना है, कोई भी सेवा करे, है ना, जैसे हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ना, फैमिली बॉन्डिंग, यहाँ तक कि हम एक दूसरे को जब मिलते हैं और सिर्फ स्माइल भी कर दे ना और ओम शांति कर दे, तो वो भी सेवा है, वो भी सेवा है, स्माइल कर दे, ओम शांति कर दे, वो भी सेवा है। तो ये सेवा हम यहाँ से सीखते हैं। इसके बाद बाबा ने क्या कहा, 3 तिलक जो हमने बोल दिए, बाबा ने फिर कहा कि सबसे ज्यादा याद किसकी है, बाबा की। बाबा कहता है मैं तुमको ज्यादा याद करता हूँ, बाबा की अविनाशी अखंड याद है। बाबा ने कहा कि मैं तुम बच्चों को इतना याद करता हूँ। बाबा का कारोबार सवेरे से चालू होता है, अमृत वेले से बाबा उठाता है, उठाना शुरू करता है देश विदेश, और बाबा कहता है मैं इतना काम करता हूँ फिर भी बच्चे बोलते हैं कि बाबा क्या करता है। तो बहुत लोगों को अनुभव होगा अमृत वेला बाबा उठाता है, होता है ना, कई बार ऐसे हमारे साथ हुआ था कि ऐसे कोई गुदगुली करता है पैर पर, और हम सोचे क्या है भाई 5 मिनट तो सोने दो, और जब तक उठे नहीं तब तक वो चलता गया। एक दो बार ऐसे हुआ हमारे साथ भी, तो याद आ रही थी वो बात आज कि देखो कैसे जा जाके सबको उठाता है, और हर जगह अभी भी अमृत वेला कहीं ना कहीं तो चल रहा है, तो बाबा अभी उठाने में ही बिजी है सबको, है ना। फिर बाबा कहता है फिर मुझे भक्तों के पास जाना होता है, फिर साइंस वालों के पास जाता है, उनको प्रेरणा देता है। तो बाबा कहता है मैं सबसे ज्यादा बिजी रहता हूँ, तो हमारा बाबा कितना बिजी रहता है ना। फिर बाबा ने एक और बात की मुरली में कि आप सब बच्चे कौन हो, दिल तख्त नशीन हो, और ये दिल तख्त पे हम सभी बैठ सकते हैं। जब सवेरे ये मुरली चल रही थी कि बाबा कह रहा था ये बड़ा दिल तख्त है, इस पे सब बच्चे बैठ सकते हैं, तो जो बहन मेरे बाजू में बैठी थी हम दोनों बोल रहे थे बाबा ने अपने दिल में सोफा रखा है बड़ा, हम सब बैठ सकते हैं, लेकिन हमें अपने दिल में सिर्फ एक चेयर रखनी है ना, जिसपे सिर्फ बाबा बैठे। अगर हमने सोफा रख दिया तो प्रॉब्लम, तो सोफा सिर्फ बाबा ही रख सकता है जिसपे हम सब बच्चे बैठे, लेकिन हमारे दिल में सिर्फ चेयर हो जिसपे सिर्फ बाबा बैठे। तो बाबा ने दिल तख्त नशीन की बात की। एक ड्रिल करेंगे अभी, है ना, तो एक काम करते हैं अभी आपस में एक दो को देखते हुए बैठ जाए, मुड़ जाए, दो दो पार्टनर्स में बैठेंगे, हम कुछ कमेंट्री करेंगे और जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आप करते जाना और एक्सपीरियंस करते जाना उस चीज को, ठीक है। जैसे मुरली इस श्रेष्ठ परिवार के बारे में चल रही है, तो सामने बैठे हुए व्यक्ति को एक श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखे, उसकी भ्रुकुटी में देखे, ये आत्मा कितनी सुंदर है, कितनी श्रेष्ठ है, ये भगवान का बच्चा है, ये श्रेष्ठ प्रभु परिवार की आत्मा है, ये ऊंचा ता ऊंचा परिवार है, उस परिवार की ये श्रेष्ठ आत्मा है। इस आत्मा का भाग्य कितना ऊंचा है, ये स्वराज अधिकारी है, बाबा ने इसे अनेक विशेषताओं से, अनेक गुणों से सजाया है, मैं इसके सारे गुण देख रहा हूँ, देख रही हूँ, ये आत्मा मेरा भाई है, हम दोनों इस ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्मा है, बहुत प्यार भरी दृष्टि दे एक दूसरे को, एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, और आज हम एक दूसरे वादा करते हैं कि हम एक दूसरे को ऐसे ही श्रेष्ठ दृष्टि से देखेंगे, हमारे परिवार में ये रूहानी प्यार सदा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दो को माफ कर देंगे, हमें ये एहसास हो रहा है कि हम संगम पर प्रभु परिवार की श्रेष्ठ आत्माएं हैं, संगम का जो श्रेष्ठ समय है इस पर हम आत्माएं मिली है, और इस समय को हम बहुत प्यार से बिताएंगे। आज हम अपने से ये वादा करते हैं कि ब्राह्मण परिवार की कोई भी आत्मा जब मेरे सामने आएंगी तो मैं इसी महसूसता से उसे मिलूंगी, अब अपना हाथ अपने पास ले ले, अब सामने वाली आत्मा को राजा देखे, भाई जो है वो एक दूसरे को राजा देखेंगे और बहने जो है एक दूसरे को रानी देखेंगे। देखे कि इनके सिर पर रतन जड़ित ताज है, दिख रहा है ताज, कितना खूबसूरत ताज पहना है इन्होंने। ये देवी परिवार की श्रेष्ठ आत्मा है। जेवरों से सजी हुई है, सिर पर तिलक है, चेहरे पर मधुर मुस्कान है, सर्वगुण संपन्न है, सोलह कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, अहिंसा परमो धर्म वाली आत्माएं है। एक राजा दूसरे राजा को कैसे देखता है, एक रानी दूसरे रानी को कैसे देखती है, ऐसे देखे। अब एक राजा दूसरे राजा को कैसे मिलेगा और एक रानी दूसरे रानी को कैसे मिलेगी, ऐसे आप एक दूसरे को मिल सकते हैं, या गले लगाए या हाथ में हाथ डाले। अभी इसी श्रेष्ठ फीलिंग के साथ एक दूसरे को आत्मा देखे। और अब से यही दृष्टि रखेंगे कि ये श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, ये देवी परिवार की महान आत्मा, ये वही आत्मा जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है, सबके लिए हम यही दृष्टि रखेंगे। ओम शांति। अच्छा लगा, ऐसा लगा हम लोग राजा है रानी है, तो ऐसे रोज करना है, सुबह सुबह जिसको भी देखे यही देखना है ना। फिर बाबा ने मधुबन निवासियों से बात की। बाबा ने क्या कहा, जो मधुबन की महिमा वो मधुबन निवासियों की महिमा। और मधुबन में ऑटोमेटिकली योग लगता है, बाबा ने कहा ये निरंतर योगी है, इनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये स्वतः ही योगी है। बाबा ने कहा ये मायाजीत है मधुबन निवासी, और कहा कि ये बाप की कशिश में रहने वाले, तो माया की कशिश दूर से ही भाग जाती है ना। और बाबा ने कहा इंजन लगा हुआ है तो पटरी पर ट्रेन चलती रहती है। अच्छा इंजन कौन है, कौन है इंजन, कौन है ड्राइवर? किसी ने हमको पूछा इंजन कौन है, ड्राइवर कौन है, तो हमने कहा इंजन शिव बाबा है, ड्राइवर ब्रह्मा बाबा है, और टिकट वाली मम्मा है। कैसे हमने क्यों सोचा कि देखो शिव बाबा तो इंजन है, उसी से हम सब की ट्रेन चल रही है, और ब्रह्मा बाबा ड्राइवर है जो हमको गाइड कर रहा है संगम युग पर, और मम्मा जो है वो चेकर है, टिकट चेकर। मम्मा हमारी कचेरी भी लगाती थी ना बच्चों की, तो मम्मा टीसी है ऐसे। तो बाबा ने कहा मधुबन, मधुबन की कितनी महिमा है। मधुबन को कहा कि मधुबन को ताज़ा ताज़ा हलवा मिलता है, गरम गरम हलवा मिलता है, जो बाहर से आते हैं उनको तो एक बार ही ब्रह्मा भोजन मिलता है, लेकिन जो मधुबन में रहते हैं उनको स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी, जैसे अभी ठंडी हो जाती है तो यहाँ पे हलवा बनता है, बारिश हो जाएगी तो हलवा और वड़ा बन जाएगा, तुरंत ये सब चीज़ें बनती हैं यहाँ पे, तो गरम गरम। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि ये जो मधुबन वाले हैं, ये जो भारत वाले हैं, इनको तवा टू माउथ मिलता है मुरली, और जो विदेशी है उनको रूखा सूखा, उनको ट्रांसलेट होके मिलता है सब कुछ, है ना। तो हमको तवा टू माउथ मिलता है, तो मधुबन का बहुत महत्व है। एक मुरली हम पढ़ रहे थे उसमें लिखा था कि मधुबन गुंबज है, मधुबन निवासी जो संकल्प यहाँ करते हैं वो स्पीड की तरह फैलता है पूरे संसार में, है ना, कहा ना विधि विधान वाला परिवार है ये। तो जो संकल्प हम यहाँ करते वो सारे विश्व में फैलता है, तो ऐसा है हमारा मधुबन। तो हमारे संकल्पों पर कितना ध्यान देना है, जब हम यहाँ पे सेवा के लिए भी आए हैं ना, तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो हम संकल्प करेंगे वही दुनिया में होगा। अगर हम चिंताएं कर रहे तो संसार भी चिंताओं में ही रहेगा। फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते न्यूज में ये आ रहा है, न्यूज में वो आ रहा है क्योंकि मेरी स्थिति वो है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों पर है। तो बाबा मधुबन से मिले, फिर बाबा ने कहा कि कुछ कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो उसमें नवीनता लाने के लिए कहा। बाबा ने कहा ज्ञान की लहरें चलती, आनंद की लहरें चलती, विशेषताओं की, वीआईपीज आएंगे, वर्कशॉप्स होंगी, पर अभी कुछ नवीन करके दिखाओ। तो क्या करने को कहा बाबा ने, दिलवाड़ा का एग्जाम्पल दिया। बाबा ने कहा दिलवाड़ा मंदिर देखो, उसकी कारीगरी देखो, डिजाइन देखो, कितनी सुंदर है, कितनी अलग है, कितना न्यारा है। तो आप सब भी चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, उसमें ये मूर्ति विराजमान है। तो बाबा ने हम सबको क्या कहा, एक एक विशेषताएं दिखनी चाहिए हम सब में, एक एक विशेषता, एक के आगे दूसरा। तो ये भी एक योग का अभ्यास है, चलते फिरते ऐसे समझना मैं दिलवाड़ा मंदिर हूँ और मैं मूर्ति इसमें विराजमान हूँ। तो हम सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। जब हम ये पॉइंट आज पढ़ रहे थे आने से पहले, हमको याद आया हमारी माताजी जब यहाँ आई थी ना, वो ज्ञान में नहीं है, वो मुझे कहती है कि तुम सबके पीछे एक एक स्टोरी है, तुम सब ऐसे ही यहाँ पे नहीं हो, तुम सबके पीछे एक एक स्टोरी है। आज हम उस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर पाए कि हर मंदिर जब बनता है ना, तो उसके पीछे एक स्टोरी होती है कि उसको किसने बनाया, उसका फाउंडेशन स्टोन किसने डाला, उसका डोनेशन किसने दिया। तो हम सब भी एक एक मंदिर और उसमें मूर्ति तैयार होती है। इसलिए जब मम्मी कह रही थी कि तुम सबके पीछे एक एक स्टोरी है, तो वो ये स्टोरी है। आप लोग को याद है लास्ट ईयर यहाँ पे हनुमान का मंदिर बन रहा था, तो हनुमान को पहले खड़ा किया गया, फिर उसके बाद बारिश होने लगी और हनुमान की पेंटिंग चालू हुई, ऑरेंज कलर का उसको पेंट किया गया। फिर उसके बाद किसी ने डोनेशन दिया होगा तो हनुमान का वो मंदिर बना, ऐसे जाली बनाई गई। तो हम सब आते जाते देखते थे उसको, तो हम सोचते थे ये ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, इसीलिए इसका मंदिर तैयार हो रहा है। तो इस तरह से हमारा भी मंदिर कहीं ना कहीं तैयार होता है, जैसे जैसे हम ब्राह्मण आत्मा संगम पर पुरुषार्थ करती है। तो बाबा ने कहा चैतन्य दिलवाड़ा, और उसके बाद बाबा ने कहा दृढ़ता लाओ, दृढ़ता से सफलता मिलेगी, हर संकल्प में तुम्हारे दृढ़ता हो, है ना। और आज की मुरली का वरदान है, बाबा ने कहा हाय हाय नहीं होनी चाहिए, वाह वाह होनी चाहिए, है ना। हाय हाय के बजाय वाह वाह, जो हुआ वो वाह, जो हो रहा है वो वाह, और जो होने वाला है वो वाह। मॉर्निंग में एक टॉपिक पे चर्चा हो रही थी, पॉजिटिविटी कैसे देखें नेगेटिव सिचुएशंस में, है ना। तो उसमें भी हमने काफी चर्चा की कि वाह वाह कब होगी, नेगेटिविटी तो बहुत आएगी, लेकिन वाह तब होगी जब हम उसको नेगेटिव परसीव ही नहीं करें कि ये नेगेटिव है ही नहीं, हम उसको नेगेटिव देखते या हम उसको प्रॉब्लम देखते तब हाय हाय चालू हो जाती है, है ना। तो हमने एक कहानी सुनाई थी, उस कहानी से फिर इस चर्चा को यही विराम देंगे। तो उस कहानी में ऐसा होता है कि किसान होता है, वो अपने खेत से जब घर जाता है तो एक लकड़ी लेके दो घड़े रखता है और घड़े में पानी लेके जाता है अपने घर। लेकिन ऐसा होता है कि एक घड़ा पूरा जाता है और एक घड़े में सिर्फ आधा पानी बचता है, तो उस घड़े में छेद होता है, तो इसलिए आधा घड़ा पानी, डेढ़ घड़ा पानी पहुंचता है घर पर। तो ये घड़े को बहुत दुख होता है कि मेरे से आधा घड़ा ही पानी पहुंचता है, और इस घड़े को बहुत ईगो आता है कि मेरे से तो पूरा पानी पहुंचता है। तो ऐसे एक दो साल बीत जाते हैं, तो जो घड़े में पानी बचता नहीं है ना, आधा घड़ा, वो किसान से कहता है मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो वो कहता है क्या, तो वो कहता है कि मैं ना आपको सिर्फ आधा घड़ा पानी पहुंचा पाता हूँ, क्योंकि मेरे में ना कमी है, मेरे में एक छेद है जो आप नहीं जानते कि उसकी वजह से पानी पूरा नीचे गिर जाता है पहुंचने तक। तो किसान मुस्कुराता है और किसान कहता है कि ठीक है, कल जब हम आएंगे ना तो तुम रास्ते में फूलों को देखना, ठीक है। तो घड़ा कहता है ठीक है। तो जब वो आता है तो वो देखता है रंग बिरंगी फूल है, इतने अच्छे फूलों को देखता है और खुश होते होते वो घड़ा आता है, लेकिन जैसे ही घर पहुंचता है वापस आधा घड़ा पानी बच जाता है। तो फिर वो मायूस होता है और किसान को कहता है कि फिर से आधा घड़ा ही पानी बच गया। तो किसान कहता है कि तुमने ठीक से देखा नहीं, मुझे तुम्हारी ये कमजोरी पहले से ही पता थी, तो मैंने क्या किया, उस रास्ते पर बीज बो दिए और जब तुम आते थे तो पानी छलकता था और आज देखो रंग बिरंगी फूल है इस रास्ते पर और इन फूलों को मैं भगवान को अर्पित करता हूँ और तुम्हारी वजह से ही मेरा घर इतना सुंदर फूलों से सजा हुआ है। तो बात कहने की ये है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हम कैसे परसीव करते हैं सिचुएशन को। किसान तो बड़ा खुश हो रहा है, पॉजिटिविटी देख रहा है, और वो जो घड़ा है वो तो नेगेटिविटी देख रहा है कि आधा घड़ा पानी बचता है। तो इसीलिए सदा वाह वाह। तो आज की मुरली बहुत विशेष है, परिवार के ऊपर है, तो बार बार इसको याद करना, बार बार पढ़ना, ऐसा मौका हमको बार बार नहीं मिलने वाला। हम एक ही बार मिले हैं, इसलिए एक दूसरे को माफ करना सीख देना, एक दूसरे से प्यार करना सीखना, चाहे कोई कैसा भी हो लेकिन उनको माफ करना है, क्योंकि पता नहीं अभी कितना समय बाकी है और हम सब सत्युग में पहुंच जाएंगे और फिर एक दूसरे को पहचानेंगे भी नहीं। ठीक है, ओम शांति।